Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kaivalya Upanishad ka barahma mantra hai. Uchcharan kar le. शैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै सैव जाग्रत् परितृप्तिमेति सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै सैव जाग्रत् परितृप्तिमेति अब जाग्रत स्वप्न सुसुप्त आदि अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अवस्थात्रय का साक्षी जो आत्मा है उसका प्रतिपादन करेंगे। सैव माया परिमोहित आत्मा मतलब वही जो पूर्वोक्त चिदाभास है, जीव है, माया परिमोहित आत्मा, माया के द्वारा मुग्ध होकर के शरीर अमास्थाय करोति सर्वम, शरीर में देहाभिमान करके सब कुछ करता है, कर्तृत्व का अभिमान भी करता है। स्त्री अन्न पानाद विचित्र भोगई, वह जागृत अवस्था में अपनी इच्छा अनुसार स्त्री अन्न पानाद इतने विचित्र भोग हैं उन सब का संपादन करता है। परितृप्ति मेति एति मतलब प्राप्त नोती, इन गतों का एति बनता है, एति इतः यन्ति। अब लो बढ़िया है, व्याकरण से कोई वो नहीं है ना, फल खाने से मतलब है, पेड़ चाहे कोई भी लगाए पत्ता क्या कितना है ना। हाँ, तृप्ति को एति मतलब प्राप्त नोति प्राप्त करता है। इसके पूर्व विस्तार से हमने चार मंत्रों में बहुत विस्तार से श्रवण किया है, आप यहाँ तो सबको संक्षेप से बताना है। जीवात्मा जो अपने अंतःकरण में जन्म जन्मादि की संस्कार है, वही यहां पर संस्कार माया सबसे ग्रहण करना, यहां जो माया शब्द है ना वह स्वभाव अर्थ में है, संस्कार अर्थ में जो जन्म जन्मांतर के अंतःकरण में इसके संस्कार हैं, इसको स्वभाव भी कहते प्रकृति भी कहते, उसके अनुसार स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगों से बड़ा प्रसन्न होता है। और सात्विक है तो सात्विक अपना भजन ध्यान के संस्कार से उन कर्मों से तृप्त होगा। राजस है तो बिजनेस व्यापार कारोबार धनार्जन से तृप्ति का अनुभव करता है। विचित्र मतलब कि इसका कोई निश्चित नहीं है। भोग का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, कभी सुखी होता कभी दुखी होता, जैसे दिन रात ऐसे जीवन में चलते रहते, और जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही चलते भी रहेंगे। हम लोग बार बार ही सोचते हैं, सभी लोग चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, ज्ञानी या अज्ञानी, ज्ञानी मतलब परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष नहीं, क्या सोचते हैं कि ये समस्या दूर हो जाए, ये जरा शत्रु जो हमारे जीवन का कांटा है दूर हो जाए तो आराम से भजन करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा, आनंद होगा। पर ये संभव नहीं। जिस प्रकार नदी के दो छोर होते हैं, उन दोनों छोर के बीच में नदी का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है, एक छोर भी यदि टूट जाए तो अब नदी नहीं, वो खेत बन जाएगा। दो पार्ट है, एक छोर टूट जाए ना तो नदी नहीं रहेगी और पूरा खेत की तरह पानी फैल जाएगा। ऐसे हमारे जीवन रूपी नदी के दो ये पार्ट है, तीर हैं, किनारे हैं, राग द्वेष, निंदा तुति, मान अपमान, अच्छा बोरा, शत्रु मित्र। जितना हमारे जीवन यात्रा के नदी के प्रवाह का महत्व मित्र का है, अनुकूलता का है, कहीं उससे ज्यादा प्रतिकूलता का है, शत्रु का है। शत्रु हमेशा आपको सजग करता है, प्रतिकूलता में भी आप हमेशा सावधान रहते। यहां बड़े मजे से बैठे हैं, कोई खबर नहीं, जरा सी चिंगारी लगी तुरंत दरवाजे खिड़की की तरफ भागते हैं, पूछते भी नहीं कि महाराज आपको भी बाहर निकलना है। बस आग लगी नहीं कि जहां से जगह मिला वहीं से छलांग लगा के बाहर। और यदि चिंगारी नहीं लगी, आराम से सोए हैं, बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, न दरवाजा का ख्याल न खिड़की का ख्याल। तो जब जीवन में विषाद की चिंगारी लगती है ना, संसार से प्रतिकूलता, विषाद, शोक, झटका लगता है, ठेस लगता है, तो तुरंत आप संसार से निकलने का उपाय ढूंढते कि भगवान के मंदिर में आते। ऐसे नहीं कोई आता, भगवान के मंदिर, संतों के पास, भजन ध्यान में अपने आप लग जाते। तो ये जो प्रतिकूलता है, बाधाएं हैं, ये जो विषाद है, ये जो हमारे जीवन का एक किनारा है, ज्यादा उपयोगी है। और अनुकूलता होगी तो हमें सोचने का अवसर नहीं मिलता, उसी में बहते रहते। तो जैसे नदी के प्रवाह के लिए दोनों किनारे जो है उपयोगी हैं, एक छोर के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे जीवन में राग द्वेष, शत्रु मित्र, अपना पराया, निंदा तुति, ये समझो जीवन रूपी यात्रा जो कर रहे हैं उसका ये दोनों छोर है। पर हम लोग बार बार यही सोचते हैं हमेशा कि जरा प्रतिकूलता दूर हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए, जरा उनसे अनबन उसको जरा ठीक कर ले। एक से ठीक करते दूसरी तरफ अपने आप, बिना किसी कारण के। आपके मान लो 10 मित्र हैं, अब 10 मित्र हैं तो आप कहते चलो अच्छे मित्र हैं। अब नए मित्रों को संभालने लगे, एक बार फोन नहीं किए, जो मित्र है ना अपने आप शत्रु का रूप ले लेते। देखो बड़ा अहंकारी, बड़ा घमंडी हो गया, हमें फोन तक नहीं किया, दीपावली बीत गई, नया साल बीत गया, भाई आपने नहीं किया उसको तो करना चाहिए ना, पर नहीं, इतने बात से शत्रु रूप। इधर आप मित्र बनाने चले, उधर जो मित्र थे शत्रु हो गए। तो नारायण बिना कारण के, कोई जरूरी नहीं कि कारण होना ही चाहिए, इस संसार में सब चलता रहता। तो जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं कि अपने संस्कारानुसार ये जीवात्मा संसार में कल्पना करके स्त्री अन्नपान आदि अपने अपने संस्कार अनुसार कल्पना करके सुखी दुखी होता है। अब आगे बढ़े क्योंकि हमको परसों पूरा करना है ना, श्री जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी नहीं बहुत जल्दी चलना पड़ेगा। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता स्वमायास्कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुखरूपमेति स्वप्ने सजीवः सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति। यही जीव जो जागृत में अपने बाह्य इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा था, विषय सुख के लिए तीन का एक केंद्र बिंदु में एकत्रित होना अनिवार्य है, इंद्रियां, मन और विषय। ये जागृत सुख के लिए व्यवस्था है, मनोराज्य स्वाप्निक सुख के लिए ये अनिवार्य नहीं। जागृत सुख हासिल करना है तो विषय इंद्रियां मन तीनों ही एक केंद्र बिंदु में स्थिर होना चाहिए, तब जागृत सुख मिलेगा। तीन में से एक का भी वियोग हो गया, बिखर गए तो सुख नहीं मिलेगा। सामने पदार्थ भी है, आंखें भी ठीक है, पर मन कहीं और गया तो सुख नहीं मिलेगा, या मन में कोई विक्षेप है, टेंशन, तनाव, चिंता है, तो भी सुख नहीं मिलेगा। तो तीनों एक केंद्र बिंदु में होना चाहिए। और स्वप्नावस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं, स्वप्नावस्था में मन ही पर्याप्त है, इंद्रियों की जरूरत नहीं, विषय की अपेक्षा नहीं। स्वप्ने सजीव स्वमाया कल्पित जीवलोके सुख दुख भोक्ता, यह अपनी माया से मतलब कि अंतःकरण में जैसे संस्कार है, जैसी वासना है, उसी संस्कार वासना के अनुरूप कल्पना करके सुख दुख का उपभोग करता है। सुषुप्ति काले सकले विलीने, और जब स्वप्नावस्था में थक जाता है तो थकने के बाद सुषुप्ति में जाता है, वहां सबका विलय हो जाता, सबका नाश नहीं होता, विलय होता। विलय मतलब कि वस्तु के होते हुए अदर्शन का नाम है विलय, चीज है पर दिखाई नहीं दे रही, उसका नाम विलय है। जैसे रस्सी से घड़ा का मुख बांधकर जल में डाल दिया, दिखाई नहीं पड़ रहा पर है। अभी 12 घंटे बाद यहां सब कुछ रहेगा पर विलय हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधकार में सब विलीन हो जाएगा, लय हो जाएगा। जैसे सूर्य की रोशनी आएगी सब दिखाई पड़ने लगेगा। सुसुप्ति में तमो विभूत होकर के जब सब कुछ विलय हो जाता है, सुख रूप अमेति, वह सुख रूप को उपलब्ध हो जाता है। सुसुप्त जो सुख है उस सुख का मांडुक उपनिषद ने वर्णन किया है, सुसुप्त स्थान एकी भूत, सुसुप्त स्थान में एकी भूत हो जाता है। प्रज्ञान घन एव आनंद मयो, आनंद भूक चेतो मुख प्राज्ञ, आनंद का भोक्ता होता है चेतो मुख, वह इंद्रियां नहीं होती, मनीराम नहीं होते, वहां केवल अपने स्वरूप के सुख का अनुभव करता है। जिसका स्वरूप सच्ची आनंद है उसी की अभिव्यक्ति होती है। जागृत में स्वप्नावस्था में परिच्छिन्न अभिमान है, अहम अस्मि, जागृत में और स्वप्नावस्था में अयम अहम अस्मि या मैं हूं। कोई अयम कार्य करता, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, हाँ, महात्मा हूं, दुरात्मा हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, यह अभिमान आता। सुषुप्ति में अभिमान का विसर्जन हो जाता है। सुषुप्ति में जरा भी भान नहीं होता कि यह मैं हूं, यहां पर हूं, ऐसा हूं। जागृत में बड़ा अभिमान, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं यहां सोऊंगा, होता है कि नहीं अभिमान। जरा लोकल ट्रेन में साल में एक बार यात्रा करनी चाहिए, लोकल ट्रेन होता है ना, जनरल, बिना वो क्या बोलते हैं, जनरल टिकट लेकर देखना, जरा रात के 12-1 बजता है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे 12-1-2 बजता है ना, किसी को होश नहीं होता किसी की, कहीं जो है टांग कहीं हाथ कहीं पैर कहीं सिर, मतलब कि यह मैं हूं कितना ही बचा के रखो पर उस तमो गुण के कारण से वो मैं की चलती नहीं कुछ। 11, 12, 1, 1.5 तक संभाल के रखता है कि मैं हूं, मैं कैसे इन लोगों के साथ सोऊं, ये सब का स्पर्श ठीक नहीं है। परंतु जब बहुत अधिक निद्रा सताती है तो ये जो मय का विसर्जन हो जाता, तो वहीं पर लोकल डिब्बे में जहां गाजर मूली की तरह सब है ना, परम आनंद का अनुभव होता, जो आनंद आपको अपने एसी रूप में नहीं मिलता है। इतनी व्यवस्था करके, बढ़िया आज भोजन पानी करके और गद्दा आदि लगा के सोने में जो रस नहीं मिलता ना, उस जनरल भोगी मिल जाता। तो वहां पर क्या हुआ, एक ही काम हुआ, अहम का विसर्जन हो गया। यह मैं हूं इसका भान नहीं होता, परम ज्ञान की उपलब्धि, आनंद की उपलब्धि, ऐसे जागृत में होना चाहिए। जागृत में भी यदि अहम का विसर्जन हो जाए ना, उल्टा होता, अहम का पोषण होता है। छोटी न छोटी अरु अरुझाई, रामायण में है ना, हम सत्संग स्वाध्याय सुनते, वेदांत पढ़ते पढ़ाते, और अभिमान होता है कि औरों से हम ज्यादा विद्वान ज्यादा ज्ञानी, 40 साल से सुनते सुनते यार होता है कि नहीं अभिमान, ईमानदारी से बताओ। तो ये अभिमान भी रहेगा तो देखना सुसुप्ति नहीं आएगी, इस अभिमान को भी आपको छोड़ना पड़ता जो बढ़िया अभिमान है। तो ऐसे जागृत में किसी प्रकार का जरा भी तनिक बेईमान नहीं होना चाहिए, अभिमान विसर्जन हो जाएगा तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी परम आनंद की उपलब्धि। तो सुसुप्ति अवस्था का वर्णन कर दिया। अच्छा, इसके बाद आगे चले 14th मंत्र। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धः पुरात्रे क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरात्रयं च पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात् स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धा रात्रे क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरात्रयं च। सुसुप्ति में जाने के बाद फिर कैसे जागृत में आता उसका वर्णन है। यंत्रमपि प्रचलति योति यतो हि सावधानतया श्रोतव्या, यंत्रम पृष्ठभागे अस्ति। पुनः च जन्मांतर कर्म योगात् सुसुप्ति से ये जीव कैसे आता है जागृत में स्वप्न में, इसका वर्णन किया है 14th मंत्र में। युगपत अयुगपत दोनों शास्त्र की व्यवस्था है। युगपत भी एकाएक आता है सुसुप्ति से जागृत में, और कभी क्रम से आता है, सुसुप्ति से स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था है जागृत में, दोनों है। तो जन्मांतर के कर्म मतलब प्रारब्ध, यहां कर्म काट देना प्रारब्ध। इस बात से न्यायिक वेदांती सभी सम्मत हैं, आप उतने ही काल तक सो सकते हैं इतना आपका प्रारब्ध है। लाख इंजेक्शन गोली लगाओ कुछ नहीं होना है, प्रारब्ध सुसुप्ति का नहीं है। तो चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया संसाधन इकट्ठा कर लो, एसी लगा लो, है ना, गद्दा गलीचा लगा लो, सुंदर भोजन कर लेटो, सुसुप्त नहीं आएगी। तो इसके विषय में वेदांत परिभाषा में और सिद्धांत बिंदु में वर्णन किया है दोनों जगह कि न्याय लोक न्यायिक कहते हैं अदृष्ट और वेदांति कहते प्रारब्ध। बात एक ही है, न्यायिक कहते अदृष्ट, वेदांत कहता प्रारब्ध। जब तक आपका दृष्ट है तभी तक आप 4 से 8 घंटा सुसुप्ति में रहते हैं, फिर जागृत का दृष्ट जब पैदा होता है तो आप जागृत में आ जाते, फिर स्वप्नावस्था का दृष्टि स्वप्नावस्था में जाते। तो ये सब अदृष्ट से होता है, ये तो वैशेषिक न्यायिक दार्शनिक कहते और वेदांत कहता प्रारब्ध कर्म से। जैसा प्रारब्ध कर्म उसके अनुसार सुषुप्ति आती, स्वप्नावस्था और जागरण होता है।